राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान को तो अपनी लीला समेटनी थी और ब्राह्मणों को निमित्त बना दिया। कृतवर्मा सात्यकी ये आपस में लड़ने लगे, रुक्मणी पुत्र सत्यभामा पुत्र ये आपस में लड़ने लगे। यही चाहते थे भगवान, सबका संहार हो जाए। जब इन सब का संहार हो गया तब भगवान कृष्ण दारुक और बब्रू, ये भगवान का ही यादव था, एक तीन जने बाकी थे। तो बलराम जी को देखते 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 वे बलराम जी के पास आने लगे तो भगवान कृष्ण ने दारुक को बड़े तरकीब से विदा किया, दारुक तुम जाओ और अर्जुन को द्वारिका बुला लो, और बब्रू को कहा कि तुम द्वारिका में जाओ और वहां के स्त्रियों की रक्षा करो। अकेले रह गए भगवान अकेले, और बलराम जी के पास गए। तो बलराम जी को देखा, जब बब्रू था वो अंदर गया द्वारिका में तो एक लोहे के मुदगर से वो भी मर गया। भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने बलराम जी से कहा कि भाई तुम मेरी प्रतीक्षा करना, अभी मैं सबकी रक्षा का प्रबंध करके आता हूं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी को, ठीक है ये ठीक है, वसुदेव जी को कहा कि अर्जुन आवे जितने आप लोग यहां रहना, मैं जा रहा हूं। बलराम जी के पास पहुंच गए, बलराम जी के मुंह से एक सफेद सांप निकला और समुद्र की तरफ जाने लगा। तो उनकी अगवानी करने के लिए कई नाग आए और वो समुद्र में प्रवेश कर गए। इधर भगवान अकेले योग में स्थित होकर सोए हुए थे, नींद में नहीं योग में। नींद में सोना और योग में सोना अंतर है। योग में सोना है ज्ञान पूर्वक सोना, नींद में सोना है थकावट आ जाए। तो भगवान का शरीर अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए उनके यहां नींद आने का प्रश्न ही नहीं है। भगवान योग में स्थित होते हैं और फिर ये तो और ही अंतिम समय है। तो योग में स्थित होकर के सोए हुए थे, शिकारी ने बाण मारा, भगवान के पास आया तो बड़ा डर लगा, शंका हुई, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है, मेरे बाण मेरी मर्जी के बिना थोड़ी लग सकते हैं, चिंता मत करो। और फिर भगवान ऊंचे लोक में गए, वहां उनका बड़ा स्वागत हुआ। इधर अर्जुन वसुदेव जी के पास दारुक के समाचार सुनकर आया, यदुवंशी वगैरह सब नष्ट हो गए हैं ये सब बात दारुक ने बता दी। वसुदेव जी के आकर प्रणाम किया कि मामा जी हमने सुना है कि यदुवंश का संहार हो गया, ये क्या बात हुई हमको बात बताओ। अब वसुदेव जी बोलते हैं, यहां तक का प्रसंग हो गया। वसुदेव जी ने कहा, अर्जुन जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी वे आज यदुवंशी कहीं देखने में नहीं आ रहे हैं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं, बात क्या है? वसुदेव जी बोले, अर्जुन जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी वे आज नहीं देख पाता हूं, उन्हें आज देख नहीं पाता हूं, इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था, तथा तुम भी जिनके प्रशंसा के गीत गाया करते थे, और श्री कृष्ण के स्नेह भाजन पुत्र प्रद्युम्न और दूसरे सात्यकी इस समय वृष्णि वंशियों के नाश के प्रधान कारण हुए, अथवा सात्यकी कृतवर्मा अक्रूर या प्रद्युम्न की क्यों निंदा करूं? वास्तव में ऋषियों का साप ही महान कारण है। इस सर्वनाश का प्रधान कारण केवल ऋषियों का शाप है। जो जगदीश्वर बाल्य अवस्था में केशी को मार सकते हैं, कंस को मार सकते हैं, चेदिराज शिशुपाल को मार सकते हैं, निषादराज एकलव्य, कालिंग, मागध, गांधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बना सकते हैं, जिन्होंने पूर्व दक्षिण तथा पर्वतीय प्रांत के नरेशों का संहार किया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों की अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। यदि वे चाहते तो इस शाप को वे मिटा सकते। श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं, वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे। जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गांधारी तथा ऋषियों के वचनों को झूठा करना नहीं चाहा। अर्जुन, तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मारा गया था, लेकिन कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो गया कि नहीं, अब ये घटना तो तुम्हारे आंखों के सामने की है। इतनी शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा कृष्ण ने अपने कुटुंबियों की रक्षा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई, मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशायी हो गए, तो उन्हें इस अवस्था में देखकर कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी आज इस कुल का संहार हो गया, अर्जुन द्वारिकापुरी में आने वाले हैं, आने पर उनसे वृष्णि वंशियों के महानाश का वृत्तांत सुना दीजिएगा। अर्जुन महान तेजस्वी है, वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र ही यहां आ जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे कहा, पिताजी जो मैं हूं वो अर्जुन है और जो अर्जुन है वो मैं हूं, मुझ में और अर्जुन में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन जो कहे वो काम आप कीजिएगा। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप में हो उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका और्ध्वदैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के यहां से जाते ही चार दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस नगर का समुद्र में प्रवेश हो जाएगा। समुद्र की लहरें इस नगरी को डुबो देंगी। मैं किसी पवित्र स्थान पर रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन अचिंत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यहीं छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशा की ओर चले गए। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूं। अर्जुन, मुझसे भोजन नहीं किया जाता, अब मैंने तो भोजन करूंगा न इस जीवन को रखूंगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है जो तुम यहां आ गए। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वो सब करो। ये राज्य, ये स्त्रियां, ये रत्न सब तुम्हारे अधीन है। अब मैं पूर्ण निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। अपने मामा की बातें सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। वे वसुदेव जी से बोले, मामा जी, वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई ये पृथ्वी अब मुझसे देखी नहीं जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी अब इस पृथ्वी पर रहा नहीं जाएगा। हम सभी का निश्चय एक है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृष्णिवंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृष्णिवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूं, दारुक प्रबंध करो। ऐसा कहकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया और वहां एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। कौन? अर्जुन। उस समय राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियां अर्थात मंत्री, सेनापति इत्यादि तथा वेद वेत्ता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सभी दीन, मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे। अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदों से कहा, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को तुम्हारा राजा बना दिया जाएगा। आज के सातवें दिन सूर्य उदय होते ही हमें इस नगर से बाहर जाना है, इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो। अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी प्रारंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में वो रात बिताई। उस रात को उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत विचार किया, इसी महल में यहाँ हम बैठ के चर्चा करते थे, यहाँ हम भोजन करते थे, यहाँ हम सोते थे इत्यादि पिछली बातों को याद कर अर्जुन सारी रात फूट फूट कर रोने लगे। सवेरा होने पर महातेजस्वी वसुदेव जी ने अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त कर ली, अर्थात वसुदेव जी भी चले गए। वसुदेव जी के जाने पर उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा, रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज हृदय को तोड़ रही थी, बड़ी भयंकर और दुख भरी आवाज थी। सब स्त्रियों के बाल खुले थे, आभूषण और मालाएं टूट टूट कर बिखरी पड़ी थी और वे छाती पीटती हुई करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान बनाया, उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारिकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख और शोक में भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे और उनके पीछे पीछे वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर अपनी हजारों पुत्र वधुओं के साथ साथ जा रही थी। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। जब चिता में आग लगा दी तो उनकी चार पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पतिलोक को प्राप्त हुई। पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार की सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित वसुदेव जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि विष्णु और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुदेव जी को भावभीनी जलांजलि दी। उसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां वृष्णियों का संहार हुआ था। उन्हें मरकर धरती पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्म शाप के कारण एरका से उत्पन्न मुसलों द्वारा मारे गए समस्त यादव वीरों की अंत्येष्टि क्रिया की। जब सबका विधिवत प्रेत कर्म हो गया तो अर्जुन सातवें दिन रथ पर सवार हो तुरंत द्वारिका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृष्णिवंशी राजाओं की वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई जा रही थी। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृष्णियों के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग, बूढ़े और बालकों से युक्त, वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और वृष्णिवंश के छोटे छोटे बालक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पौत्र वज्र को आगे करके बड़े दुख के साथ चल रही थी। भोज वृष्णि और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के साथ जा रही थी। वृष्णि वंशियों का ये महान समुदाय, जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, एक विशाल समुद्र के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे कोई समुद्र हो मनुष्यों का। उन सब के निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी हुई द्वारिका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारिकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे और उस समय उनके मुख से एक ही बात बार बार निकल रही थी, दैव की लीला अद्भुत है। अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों, नदियों के तट पर निवास करते हुए यदुवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते वे अत्यंत समृद्धिशाली पंचनद देश में पहुंचे और वह प्रांत गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को साथ ले जाते देख वहां के रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब आभीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की, भाइयों ये देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ न समझकर वृद्ध बालकों के साथ एवं बहुत सी स्त्रियों के साथ अनाथ समुदाय को अकेला लिया जा रहा है। इसके सभी सैनिक अभी उत्साहहीन है, इनमें लड़ने का बल नहीं है, क्योंकि इनके कुल का संहार हो गया। इस बात का इनके मन में बड़ा विषाद है, इसलिए बड़ा अच्छा मौका है इनके ऊपर धावा बोल देना चाहिए और इनके रत्न लूट लेने चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले वे लठधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलट फेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने के लिए उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और बड़ी गर्जना के साथ बोले, पापियों यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर भी उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बार बार उनके मना करने भी उस समूह के ऊपर चढ़ाए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना प्रारंभ किया और बड़े यत्न के साथ, कठिनाई के साथ चढ़ा दिया। किंतु वे जब अस्त्र शस्त्र का स्मरण करने लगे तो कोई याद ही नहीं आया मंत्र। अर्जुन बड़े लज्जित हुए कि ये क्या है। पहली बात तो गांडीव धनुष के ऊपर डोरी लगने में मुझे इतना जोर आया, और मैं जो भी बाण रख करके चलाना चाहता हूं चलता ही नहीं है। हाथी सवार और योद्धा भी उन डाकों के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा नहीं सके। इस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन स्त्रियों पर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे कितनी ही सुंदरी स्त्रियों को घसीट घसीट कर चारों ओर से ले जाने लगे। उनकी ये दुर्दशा देख बहुत सी स्त्रियां डाकुओं के इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो गए और हजारों वृष्णिवंशी योद्धाओं को साथ लेकर गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त भी हो गए। बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ी झुंझलाहट हुई, दुख हुआ और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे। जन्मेजय उस समय पार्थ के देखते देखते ही वे म्लेच्छ डाकू वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए। अर्जुन बड़े आश्चर्य में डूब गए। ये वो अर्जुन था जिसके नाम से भीष्म, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े योद्धा कर्ण एक धाक समझते थे, प्रभाव समझते थे। आज ये वो अर्जुन है, इसके सामने सामान्य लुटेरे स्त्रियों को ले जा रहे हैं, रत्न को ले जा रहे हैं, पर ये लाचार है। क्या कारण है? फिर अंत में सोचा कि ये दैव का विधान है। वे दुख और शोक में डूबकर बड़ी लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही, धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों का भी क्षय होने लग गया। इन सब बातों को दैव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके वे लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस प्रकार वृष्णिवंशियों के शेष परिवार को ले आकर अर्जुन ने उनको जहां तहां बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर का राज्य दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया तथा बूढ़ों बालकों एवं अन्य स्त्रियों को लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और इन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्यकी के पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती सारस्वत देश का अधिकारी बना दिया और वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्रनाभ के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। रुक्मिणी, गांधारी, शैव्या, हेमवती और जाम्बवती ये अग्नि में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। जो जो द्वारिकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सब का यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्रनाप को सौंप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचे और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूं, आपको प्रणाम करता हूं। उन्हें आए देख महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त तो अशांत था, वे बार बार लंबी सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, तुम्हारे ऊपर नख बाल और अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए, घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है? अथवा तुमने ब्रह्म हत्या तो नहीं की है? तुमने रजस्वला स्त्री से संपर्क तो नहीं किया है? कहीं युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए हो? क्योंकि श्रीहीन से दिखाई देते हो। यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, इतने शोक में बैठे हुए हो। अर्जुन ने कहा, भगवन, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वे मेरे आत्मीय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध के अंदर वृष्णि वीरों का नाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था, जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली भोज, वृष्णि और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे। समय का उलट फेर तो देखिए, महर्षि व्यास जी महाराज, जिनकी भुजाएं परिक के समान थी तथा जो गदा परिग और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे, वे ही एरका नामक घास से मर गए। वह उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता है। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, जो कि सूखता नहीं है, पर्वत हिलने लगे जो हिलते नहीं है, आकाश टूट पड़ा टूटता नहीं, अग्नि में शीतलता आ गई जो कभी ठंडी होती नहीं। ये घटना विश्वास के योग्य नहीं है, परंतु फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई वह इससे भी ज्यादा कष्टदायक है। हे महर्षि, पंचनद देश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठान कर मेरे देखते देखते वृष्णि वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया और मैं कुछ नहीं कर सका। वहां मेरे पास धनुष भी था, वही गांडीव धनुष जिसके लिए मैं देवताओं से भी युद्ध करने में पूरा साहस रखता था। आज मैं आभीरों से युद्ध नहीं कर सका, धनुष का संधान नहीं कर सका। मेरी भुजाओं में कितना बल था, वो बल एकदम समाप्त हो गया। मेरे नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान, बड़ा आश्चर्य हो रहा है महर्षि, किन किन देवताओं से कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं और आशीर्वाद प्राप्त करके लिया था, वो सब एक क्षण में लुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज पीतांबरधारी श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, वे परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे। वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मस्तिष्क में चक्कर आता है, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे तो दिग्भ्रम हो गया, पता ही नहीं है किधर सूर्य उदित होता है, किधर सूर्य अस्त होता है, कौन दाई दिशा है, कौन बाई दिशा है। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था, मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया था। अब हृदय शून्य होकर इधर उधर भटक रहा हूं। अतः आप कृपा करके इस दुखी हृदय को सांत्वना दे, उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हो गए, तुम उनके लिए शोक मत करो, उनकी ऐसी ही होनार थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इस संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी। सुनो अर्जुन, तुम तो जानते हो कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर एक ब्राह्मणों का दिया हुआ यदुवंशियों के प्रति शाप, इसको बदलना उनके लिए तो कोई कठिन काम नहीं था। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे आगे चलते थे, अर्थात सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष थे? साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, और यदि वे यदुवंशियों का संहार ब्राह्मणों के शाप से नहीं करवाते तो उनका अवतार व्यर्थ हो जाता। अर्जुन, उन्होंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है। महाबाहो, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, तुम्हें सब प्रकार से सफलता मिल चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है अर्जुन, और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है कि अब तुम यहां से चले जाओ। जब उद्भव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब नाश का समय आता है तो इन सब का भी नाश हो जाता है। काल इन सब की जड़ है, संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल है, और इनके संहार का बीज भी काल है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी अब पूरा हो गया, इसलिए अस्त्र शस्त्र याद नहीं आते हैं, तो तुम्हारा तो काम पूरा हो गया, शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए वो जैसे तुम्हें शस्त्र मिले थे, जिस काम के लिए मिले थे, वो काम पूरा हो गया, अब शस्त्र तुम्हारे पास क्यों रहेंगे, वे जहां से आए थे वहीं पर चले गए। अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय आया है अर्जुन, मुझे इसी में ही तुम्हारा परम कल्याण दिखता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को तत्वतः समझकर अर्जुन ने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया, और श्री कृष्ण का ऐसा ही संकल्प था ये समझकर वे हस्तिनापुर को चले गए, और वहां जाकर सीधे युधिष्ठिर जी से मिले, और उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार सुना दिया।